यशया अध्याय आठ। अध्याय आठ में वो अशूर राज्य द्वारा आक्रमण की भविष्यवाणी देता है। यशया अध्याय आठ पद एक। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, एक बड़ी पटिया लेकर उस पर साधारण अक्षरों से ये लिख, महर शला हाशबास के लिए। महर शला हाशबास का अर्थ है लूट के लिए, जल्दी कर, जल्दी कर। यशया अध्याय आठ पद दो से लेकर चार तक। और मैं विश्वास योग्य पुरुषों को अर्थात उरिया याजक और जेबरेखिया के पुत्र जकरिया को इस बात की साक्षी करूंगा। और मैं अपनी पत्नी के पास गया और वो गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उसका नाम महर शला हाशबास रख, क्योंकि इससे पहले कि वो लड़का बापू और मां पुकारना जाने दमिश्क और शेमरोन दोनों की धन संपत्ति लूटकर अशूर का राजा अपने देश को भेजेगा। अब उसकी पत्नी का पुत्र उत्पन्न हुआ और परमेश्वर ने यशया से कहा, महर शला हाशबास रख, क्योंकि इससे पहले कि वो तीन वर्ष का हो कि मां बापू पुकारे दमिश्क और शेमरोन दोनों की धन संपत्ति लूटकर अशूर का राजा अपना देश को भेजेगा। यशया अध्याय आठ पद पांच से लेकर आठ तक। यहोवा ने फिर मुझसे दूसरी बार कहा, इसलिए कि लोग शिलो के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं और रसीन और रमल्या के पुत्र पेखा के संग एका करके आनंद करते हैं, इस कारण सुन, प्रभु पर उस प्रबल और गहरे महानद को अर्थात अशूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा और वो उनके सब नालों को भर देगा और सारे काडंडों से चलक कर बहेगा और वो यहूदा पर भी चढ़ आएगा और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा और गले तक पहुंचेगा। और हे इमैनुअल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढप जाएगा। यहोवा ने यहूदा से कहा कि अशूर के लोग बाढ़ की तरह आएंगे और आराम और उत्तरी राज्य इसराइल का सब कुछ साथ ले जाएंगे। ये भविष्यवाणी पूरी हुई। यशया अध्याय आठ पद नौ और दस। हे लोगों, हल्ला करो तो करो, परंतु तुम्हारा सत्य नाश हो जाएगा। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोगों, कान लगाकर सुनो, अपनी अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारा सत्य नाश हो जाएगा। तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वो निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। यहां परमेश्वर उन्हें चुनौती दे रहा है। यदि वो ये समझे कि एक होकर वे परमेश्वर की प्रजा को हानि पहुंचा पाएंगे, तो ऐसा कदापि नहीं होगा। परमेश्वर को ये स्वीकार नहीं, परमेश्वर अपनी प्रजा की ओर रहेगा। यशया अध्याय आठ पद ग्यारह और बारह। क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहे उसको तुम राजद्रोह न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना और न भय खाना। दो देश एक छोटे से देश के विरुद्ध खड़े हो जाएं तो ये एक भयानक स्थिति है, परंतु परमेश्वर उनसे कहता है, जिस बात से वो डरते हैं उससे तुम न डरना और ना भय खाना। वे टिक नहीं पाएंगे। यशया अध्याय 8 पद 13। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। परमेश्वर यशया से कह रहा है कि तुम्हें मनुष्य से और संयुक्त राष्ट्रों की संधि से भयभीत न होना कि वे क्या कहर ढाएंगे। केवल यहोवा से डरना और उसी का भय मानना कि वो क्या कर दे। यीशु ने कहा, लूका अध्याय 12 4 और 5 पद, जो शरीर पर घात करते हैं उनसे मत डरो। तुम्हें किससे डरना चाहिए? घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। क्योंकि यशया अध्याय 8 पद 14, वो शरण स्थान होगा परंतु इसराइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। देखिए, यहां अकस्मात ही मसीह की भविष्यवाणी उसके मुंह से निकलती है। यीशु यहूदियों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान था। प्रेरित पौलुस ने कहा, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 23 और 24 पद, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। यीशु यहूदियों के लिए ठोकर खाने का पत्थर बना, जैसा कि यशया नबी ने पद 15 में भविष्यवाणी की है। यशया अध्याय 8 पद 15 से लेकर 18 तक, और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चकनाचूर होंगे, वे फंदे में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। चेतावनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। मैं उस यहोवा की बाट जोता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए हैं, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सियोन पर्वत पर निवास किए रहता है। ये यशया और उसके पुत्र है जिनके नाम विशेष चिन्ह होने के लिए रखे गए थे। यशया अध्याय 8 पद 18 और 20। इसराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। जब लोग तुमसे कहे कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवतों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव ना फटेगी। वे लोग ओझाओं और टोनों से परामर्श लेते थे, वे मुर्दों की आत्माओं से मार्गदर्शन निर्देश और सम्मति प्राप्त करने के लिए तांत्रिकों से संबंध साधते थे। परमेश्वर इसके विरुद्ध है। आज भी यही स्थिति है। बहुत लोग तंत्र विद्या में समय लगा रहे हैं। क्या उन्हें मृतकों की अपेक्षा जीवित परमेश्वर से राय नहीं पूछना चाहिए कि उनका भविष्य क्या है? क्या उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था और उसकी गवाही से मार्गदर्शन नहीं खोजना चाहिए?